राम राम हरे हरे श्री कृष्ण बलराम की कृपा से श्री प्रभुपाद के इच्छा के अनुसार भक्ति शास्त्री के अध्ययन करने वाले भाग्यशाली भक्तों हम श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवत गीता के तीसरे विभाग 13वें अध्याय से कल शुभारंभ कर चुके हैं। और 13 अध्याय का पहले विभाग में एक ही श्लोक है जिसमें अर्जुन के 6 प्रश्न हैं। आप में से 6 प्रश्नों के नाम प्रभु जी 6 प्रश्न अर्जुन के, उनमें से पहला कौन सा प्रश्न है बोलिए जरा। हाँ प्रभु जी, पहला प्रश्न प्रकृति क्या है? चलो प्रकृति, पहला प्रश्न प्रकृति है। आप बोलिए दूसरा क्या प्रश्न है? पुरुष, 2 हो गए। और आप बोलिए सज्जन, तीसरा क्या प्रश्न है? सज्जन 6 में से 2 इन्होंने बोल दिए, प्रकृति पुरुष। आप 4 में से 1 बोलिए, क्षेत्र। और आप बोलिए क्षेत्र क्या? 4 हो गए, बाकी बच गए 2। प्राण बोलिए, प्राण। पांचवा क्या है? ज्ञान, बच गया 1 बाकी। वो पुजारी कहाँ है? पुजारी नहीं आया हमारा, नहीं दूसरा एक पुजारी नहीं है। हाँ वो है। और छठा क्या है? गेय, ठीक है। इसमें से कल हमने 3 के विषय में वर्णन सुना संक्षेप में, तो कौन से 3 के विषय में वर्णन सुना गौर भगवान? कल हमने किसके ऊपर चर्चा किया? कल किसके ऊपर चर्चा की? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ऊपर विशेष रूप से ज्ञान वर्णन किया। तो अब क्षेत्र किसको कहते हैं प्रभु जी? आप कौन बोलेगा? क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्र किसका परिभाषा है? आप प्रभु जी आप बोलिए, क्षेत्र किसको कहते हैं? आगे वाला, हाँ जी बोलिए, बैठे बैठे आराम से बोलिए, क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्र इस शरीर को बोलते हैं, ठीक है। व्यक्ति का क्षेत्र शरीर है और ये प्रकृति पूरे ब्रह्मांड का क्षेत्र है, परंतु अपने को उत्तर देना है शरीर, ठीक है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? आप बोलिए प्रभु। शरीर को जानने वाला, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कितने क्षेत्रज्ञ हैं? कौन कौन से? जीवात्मा और परमात्मा। अब एक आप थोड़ा सा इन 4-5 श्लोकों के तात्पर्य को पढ़ के, एक तरफ जीव क्षेत्रज्ञ, एक तरफ परमात्मा क्षेत्रज्ञ, इन 2 में क्या अंतर है, ये आप अपना एक छोटा सा अभ्यास करके लिखिए, ठीक है। बहुत सी बातें आपको मिलेंगी ये 4-5 श्लोकों के तात्पर्य में, दोनों में अंतर क्या है ये आपको पता लगेगा। पहला क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, और दूसरा उसमें बहुत सारे जो है उपमाएं भी हैं, एनोलॉजीज, राजा की और है, दूसरी भी और आगे है आएंगी। तो आपको 5-6 ऐसे विषय, 5-6 कम से कम अंग मिल जाएंगे, ये आप अभ्यास कीजिएगा, तो इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा हो गई। अब एक तीसरे विषय का भी शुभारंभ भगवान ने किया था, भगवान के मत में वो क्या विषय था? ज्ञान। और ज्ञान की परिभाषा क्या भगवान ने बताई? आप बहुत दूर बैठे, नजदीक आओ। ये भी पंखा है आपकी, कुर्सी यहाँ क्यों नहीं आएगी? ज्ञान किसको कहते हैं भाई? भगवान श्री कृष्ण के मत से और प्रभुपाद जी की परिभाषा से ज्ञान किसको कहते हैं? जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने कल पढ़ा था और कल हम यहां इस श्लोक का पाठ कर रहे थे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। आप श्लोक को निकालिए जो आपके पाठ में पढ़ा है। क्षेत्राणि शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति संयोगात्मा तत क्षेत्रज्ञ उच्यते। क्षेत्राणि ही, इसका मतलब सारे शरीर निश्चित रूप से, शरीराणि निश्चित रूप से क्षेत्र इस शरीर को कहते हैं। बीजम चापी शुभा शुभे, और इस क्षेत्र में शुभ और अशुभ का बीज जीवात्मा कर्मों के द्वारा बोता है। तानी वेति स, जो इसको जानता है, योग आत्मा, ये योग आत्मा का यहां श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद में लिखा है, दोनों का लिखा है, दोनों जीव और परमात्मा, उसको जो जानता है। वेति का मतलब जानता है। तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला, तो हमको अब किसमें क्या क्या अंतर करना है? कार्य क्षेत्र क्या है, उस कार्य को अथवा कर्मों को जानने वाला कौन है? कर्म क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है? और परम वेता कौन है, सब कुछ जानने वाला कौन है, उसका वर्णन प्रभुपाद जी कहते ऐसे किया हुआ है। अब ये जो लाइन है, अब जो आपके पुस्तक में, इसके सामने देखो, ज्ञान की परिभाषा कृष्ण के मत से, अब जो लाइन आ रही है ये है ज्ञान की परिभाषा। क्या है? परफेक्ट नॉलेज। इसका मतलब क्या लिखा है हिंदी में? पूर्ण ज्ञान लिखा है, नहीं, एक शब्द है ज्ञान के आगे परफेक्ट ज्ञान लिखा हुआ है, पूर्ण लिखा है, हाँ, पूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक का मतलब अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से। पूर्ण ज्ञान में तीन बातें जाननी चाहिए। देखो, पहले आपने दो बताई, हमने कुछ नहीं कहा, तो पूर्ण ज्ञान में तीन बातें चाहिए, जीव का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप। तो तीन स्वरूपों को जानने वाले को कहते हैं कि ये ज्ञानी है। उसको ज्ञान की परिभाषा क्या हुई? तीन के स्वरूप को जानने वाला। तो ये वही बात है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला एक ही बात है, परंतु क्षेत्रज्ञ दो है, तो इनके स्वरूप को जानने वाला। ये किसका मत है? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान और जीवात्मा दोनों एक भी है और एक नहीं भी है, ये समझना चाहिए। जो ये नहीं दोनों को अलग समझता है वो अज्ञानी है। तो हमारे को प्रकृति की स्थिति क्या है वो समझना चाहिए, और पुरुष जो इसको भोगता है, और ईश्वर जो दोनों का नियंता है। इसके लिए तीन और शब्द कौन है वेदों में, क्या शब्द होते हैं इसके लिए तीन? जीव, जगत और जगदीश। तो जीव, जगत, जगदीश। तो जीव है जीव, जगत है प्रकृति, और जगदीश है भगवान। ठीक है, इनके बीच में हमको उलझना नहीं चाहिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन तीनों को ठीक समझना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। तब प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया, या हमने कल वाणी को विराम दिया था, चक्रवर्ती पार ने उदाहरण नहीं, बलदेव विद्याभूषण ने उदाहरण दिया था, कपड़ा रंगने वाला, रंग और रंगने वाला। हाँ, तो ये अब यहां तीन लिखे हैं, चित्रकार और चित्र और चित्र बनाने का बुर्ष, ठीक है। तो अब इसमें चित्रकार तो भगवान है, क्योंकि सृष्टि तो वही बनाता है, सबको बनाने वाला वो है। चित्र अगर चित्र शरीर को कहें, क्योंकि बदलते रहते हैं चित्र, बुर्ष तो नहीं बदलता है शरीर, तो ये एक मैं सुबह से सोच रहा हूं इसका सीधा अर्थ क्या समझना चाहिए। चित्र जो है शरीर है, क्योंकि बदलते रहते हैं, और जो बुर्ष है वो बनाता रहता है चित्र, तो चित्र बनाता रहता है बुर्ष, तो बुर्ष जीव आत्मा हो जाएगा और चित्र जो है वो शरीर हो जाएगा, और दोनों को चलाने वाला जो दोनों का स्वामी है वो भगवान है। ऐसा इसका अर्थ हमको समझ में आता है, और कहीं अर्थ समझ में आए तो निकाल लेना, क्योंकि कहीं दिया हुआ नहीं है, अपने को निकालना है अपनी तरफ से, ठीक है। अब देखिए शरीर से आगे बढ़ के प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि ये भौतिक जगत को कर्म क्षेत्र कहते हैं, यही प्रकृति है। इसका अर्थ है प्रभुपाद जी अब इस तात्पर्य में प्रकृति की परिभाषा दे रहे हैं। अब तीन चीजें पूरी हो गई, कौन सी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान हो गया पूरा। अब यहां प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत जो क्रिया क्षेत्र है उसको प्रकृति कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकृति का जो भोग करता है उसको पुरुष कहते हैं, और दोनों से ऊपर जो उनका परम नियंता है उसको भगवान कहते हैं। अब इसके आगे प्रभुपाद जी सिद्धांत के लिए श्वेताश्वर उपनिषद से ये श्लोक कह रहे हैं, जिसका अर्थ है तीन ब्रह्म का वर्णन है। तीन ब्रह्म शब्द देखा है क्या, यहां ब्रह्म तीन प्रकार के ब्रह्म का वर्णन है, प्रकृति भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है और भगवान भी ब्रह्म है। अब तीन ब्रह्म का विचार वेद में वर्णित है। प्रकृति को ब्रह्म कहां कहा गया है, इसी आगे 14वें अध्याय के अंदर लिखा है, प्रकृति को महद ब्रह्म, इसी के अंदर 14वें अध्याय में आप देखिए दूसरा श्लोक या पहला जो दूसरे श्लोक में होगा, महद ब्रह्म बीज प्रदम, ये 14वां का कौन सा श्लोक है सबको बता दो, तो जीव को ब्रह्म, प्रकृति को ब्रह्म कहते हैं, ये हमको चार, हाँ 14 पढ़ो क्या लिखा है, पहला शब्द पढ़ो, सर्वदेहेषु कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति तान्ते अहं ब्रह्म ब्रह्म योनिं अहं बीज वृद्धा पिता वृद्ध योनि। तो ये क्या है, बड़ा ब्रह्म किसको कहा गया है, यहाँ प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, कहाँ कहा गया है, 14:4 में, ये आप कहीं लिखना हो तो उसके लिए प्रमाण है। जीव को ब्रह्म कहां कहा गया है, 8:2 में, वहां जीव को ब्रह्म कहा है ना, 8 में, जहां हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था ना किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, वहां ब्रह्म जीव को बोला है ना, वहां ब्रह्म जीव को बोला हुआ है। और परमात्मा को तो ब्रह्म परम ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द देते, ब्रह्म तो कहते ही है, और वो ब्रह्म भी मिलेगा हमको कहीं भगवद गीता में, भगवान को ब्रह्म कहां के आ गया कहा गया है, वो भी हमको एक प्रमाण निकालना चाहिए। तो प्रकृति को ब्रह्म कहते हैं, जीव को ब्रह्म कहते हैं और भगवान को भी ब्रह्म कहते हैं। तो प्रकृति क्रिया क्षेत्र ब्रह्म है, जीव विशेष एक व्यक्तिगत ब्रह्म है, और दोनों का नियंता वो भी ब्रह्म है। अब देखिए ये आपके उसमें लिखना पड़ेगा, जो अभी हमने आपको होमवर्क दिया है ना, क्या होमवर्क दिया है, अब होमवर्क क्या दिया है आपको, गृह कार्य क्या दिया है? जी हाँ, दो क्षेत्र ज्ञ में अंतर क्या है? तो ये देखो लाइन आ रही है दो क्षेत्र ज्ञ में, एक एक क्या है, तेरहवें अध्याय इस अध्याय में आगे ये भी बताया गया है कि दो क्षेत्र ज्ञ में से एक क्या लिखा है, देखो एक अच्युत है और एक च्युत है लिखा है ना, तो ये एक आपको अंतर मिल गया ना दोनों में, तो जीव जो है च्युत है और परमात्मा अच्युत है, ठीक है। अब दूसरा अंतर आ रहा है देख लो, इसके नीचे दूसरा अंतर लिखा हुआ है, एक एक स्वामी है दूसरा सेवक है, अर्थ इसका ही है, हाँ एक अधीन है वो सेवक है और एक एक श्रेष्ठ है एक अधीन है, एक अधिपति है एक अधीन है, वो उचित रहेगा, एक अधिपति एक अधीन, ये दो अंतर मिल गए ना, और तो दो और मिल गए, और आगे पहले हमने दो चार बात की है, तो कल तो नहीं है परसों जब इकट्ठे होंगे तब इसको अच्छी तरह से फाइनल कर लेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब प्रभुपाद ने जो इन दो क्षेत्रज्ञ को जानता है, और इन दोनों को अगर कोई एक मानता है तो फिर भगवान के वचनों के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने कहा मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, एक और उदाहरण दे रहे हैं, एनालॉजी को क्या कहते हैं आपकी भाषा में, एक उपमा और दे रहे हैं के रस्सी और सर्प को रस्सी समझना, अब सर्प को रस्सी समझना इसका ये किसके लिए उपमा दी जा रही है ऊपर लिख के, जो 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 जीवात्मा और परमात्मा को एक मानते हैं, जो दोनों क्षेत्रज्ञों को एक मानते हैं, वो भगवान के वचनों को का खंडन कर रहे हैं, या स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, तो ये है कि वो ज्ञानी नहीं है जो सर्प को जो जो रस्सी को सर्प मानता है, रस्सी को सर्प मानता है वो ज्ञानी नहीं है। तो यहां रस्सी की तुलना दी गई है, असल में दो दो क्षेत्रज्ञ में रस्सी की तुलना दी गई है जीव से, और सर्प की तुलना दी गई है वास्तविक भगवान से। अब ये क्या है कि ज्ञानियों का, ये असल में ज्ञानियों की परिभाषा है कि आदमी जब अज्ञानी है तो रस्सी को सांप मानता है, परंतु जब ज्ञान हो जाता है तो कहता रस्सी नहीं है सांप है, ये ज्ञानियों की परिभाषा है, तो यहां लिखी हुई है। अब ये उधर उपमा दी जाए या नहीं दी जाए ये सटीक नहीं लग रही है कि रस्सी और सांप, सांप वास्तव में है, रस्सी उसका भ्रम है, तो ज्ञान को समझने के लिए कई श्लोक का नाम लिखा है क्या, ऐसे नहीं लिखा है ना, तो उपमा देते हैं, ये तो रस्सी और ये उपमा भी एक है, वो भी क्षेत्र क्षेत्र के, यहाँ 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 ये उपमा ज्ञान को समझने के लिए ये, यहाँ क्यों वो शब्द लिखा है, जो इसको ठीक तरह नहीं समझता है उसको ज्ञान में नहीं मानना चाहिए, जो तो ये दो क्षेत्र के में से ज्ञान के लिए ये उपमा है, ये उपमा किसके लिए है, जो तीसरा विषय है ज्ञान उसके लिए उपमा है ये, तो जो ज्ञानी है वो रस्सी को सर्प नहीं मानता। इसका अर्थ वो जीव को भगवान नहीं मानता, इसका अर्थ ये हुआ प्रभुपाद जी की परिभाषा। भगवान अलग, परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। नाना प्रकार के शरीर हैं और उनके स्वामी भी अनंत है, जितने शरीर उतने आत्मा है। और हर एक जीव ने अपनी खेती जैसी की है वैसा ही फल मिलेगा, तो वैसा ही शरीर मिलेगा। इसका अर्थ ये भाई, जो जीव की अपनी क्रिया है, कर्म है, उसके अनुसार फल मिलेगा और उसके भोग के लिए उस वैसा शरीर मिलेगा 84 लाख जूनियों में से। परंतु भगवान उन सब में एक ही है जो विराजमान है परमात्मा के रूप में। और जो शब्द च है इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है, ये अनंत शरीरों का सूचक है। एक शरीर नहीं है, बहुत शरीर है। ये बलदेव विद्याभूषण का मत है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक शरीर में है और जीवात्मा से वो भिन्न है, सर्वदा भिन्न है। और फिर ज्ञान की परिभाषा प्रभुपाद जी दोबारा कह रहे हैं, वास्तविक ज्ञान वो है जिसमें परमात्मा को नियंता के रूप में, किसके नियंता के रूप में, प्रकृति और सीमित पुरुष। सीमित पुरुष लिखा है, क्या लिखा है, विशिष्ट भोक्ता तो शब्द नहीं है, एंड दी फाइनेट इंजॉयर। फाइनेट इंजॉयर का अर्थ विशिष्ट नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं, विशिष्ट गलत शब्द है। फाइनेट इंजॉयर का मतलब है सीमित भोक्ता, असीम भोक्ता भगवान है, सीमित भोक्ता। तो ये शब्द हिंदी में आपकी किताब में ठीक कर लो, ये शब्द उचित सही नहीं है, हाँ सीमित भोक्ता, अंग्रेजी में फाइनेट इंजॉयर। तो हम चौथे श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। तत्क्षेत्रम तत्क्षेत्रम यादृक यद्विकारी यतश्च सच यो यत प्रभावश्च समासे न मे शृणो। समास किसको कहते हैं, संक्षेप में बोलने को समास कहते हैं, जो थोड़े में बात कही जाए उसको कहते हैं। और इसके विपरीत शब्द क्या है, समास और व्यास। समास और व्यास, समास का मतलब संक्षेप में, व्यास का मतलब विस्तार से, ठीक है, दो शब्द आपको सुन। तो भगवान कहते हैं मैं आपको संक्षेप में कह रहा हूं, समास में कह रहे हैं मतलब संक्षेप में कह रहे हूं। किसके विषय में कह रहे हैं, तो पहला शब्द देखो, क्षेत्र के विषय में कह रहे हैं। और क्षेत्र का अर्थ है शरीर भी और प्रकृति भी, आप देख दोनों समझ लो क्षेत्र है, एक व्यक्तिगत क्षेत्र, एक पूरा ब्रह्मांड सब जीवों का क्षेत्र। तो अब क्षेत्र के विषय में चार पांच बातें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझसे संक्षेप में सुनो कि ये क्षेत्र किसका बना हुआ है। जो क्षेत्र यच, जो यच क्षेत्र है ना, उसका अर्थ है ये किस चीज का बना हुआ है, ये ब्रह्मांड किसका बना हुआ है और शरीर किसका बना हुआ है। जिसका शरीर बना है उसी का ब्रह्मांड बना है, दोनों एक जैसे। क्या है, 24 तत्व हैं, आगे आगे आएगा। और फिर है इसके गुण क्या है, और गुण है यादृक। यादृक का अर्थ है इसके गुण क्या हैं, शरीर के गुण क्या हैं, क्षेत्र के गुण क्या हैं। तीसरा है यद विकारी, इसमें कौन से विकार होते हैं। और फिर है यतश्च, ये कहां से उत्पन्न होता है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? यत उसका मतलब बाय व्हाट वैरायटी इट इज नोन, बाय व्हाट वैरायटी इट इज नोन का मतलब है कौन सी विभिन्नता से इसको जाना जाता है। और फिर है सह च य, इसका मतलब क्षेत्रज्ञ कौन है। और फिर है यत प्रभावस्थ, और उसका प्रभाव क्या है। अब कितनी बातें हो गई, देखो एक लिस्ट लिख लो कितनी बातें इसमें भगवान संक्षेप में कह रहे हैं। पहले क्षेत्र किसका बना हुआ है, दूसरा उसका गुण क्या है, और तीसरा है उसमें विकार क्या है, और चौथा है कि उसका उत्पत्ति कहां से होती है, और पांचवा है उसके विभिन्नता, विभिन्नता का के कौन सी विभिन्नता से जाना जाता है। क्या लिखा है? उसको जानने वाला कौन है, ठीक है। और फिर प्रभाव क्या है, बाय विच वैरायटी इज नोन हु इज नोअर। दो बातें हैं यहां, यत सह च यह। अब इसके विस्तार से एक एक कौन सी कहां बताई गई है वो विश्लेषण करके लिखा है, तो हम उसको देखते जाएंगे। तो इसका अनुवाद कोई पढ़ ले।
अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है।
ठीक है, तो आप कितने छह छह लिख दो, कम से कम छह हैं के पांच हैं। अब वो चक्रवर्ती पाद के भाव को सुनिए। जो पहले भगवान ने संक्षेप में कहा है क्षेत्र क्या है, पहले कह दिया शरीर क्षेत्र है, इतना ही कह दिया। अब उसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करते हैं कि ये क्षेत्र शरीर है, ये किस चीज का बना हुआ है, किसके गुण क्या है। अब वो वर्णन कर रहे हैं किस चीज का शरीर बना हुआ है, मुझसे संक्षेप में सुनो। ये पहली बात है किस चीज का बना हुआ है, तो उसको जो किस चीज का बना हुआ है, पांच पांच महाभूत प्राण इंद्रियां इसका बना हुआ है। ये सामान्य अर्थ ये है, हमने पहले क्षेत्र के लिए तीन शब्द बोले थे। क्या है क्षेत्र, किसको कहते हैं, शरीर इंद्रियां और प्राण, और यहां भी ऐसे ही लिखा और चीजें इतना लिखा है। और विस्तार आएगा, परंतु यह सामान्य अर्थ क्षेत्र का। इसके गुण क्या है, इच्छा द्वेष सुख दुख, ये इसके गुण है, ये शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसमें विकार क्या है, इसके विकार क्या है, कौन सी डिजायरेबल अनडिजायरेबल, मतलब प्रिय अप्रिय, कहां से उत्पन्न होता है, कहां से उत्पन्न है, दो चीजों से लिखा है, दोनों से, ये दो चीजों का मिला हुआ शरीर, शरीर किसका, दो चीजों का मिला हुआ है, एक प्रकृति का एक पुरुष महेंद्र जीव बैठा है। और यत इस दोनों को अलग कैसे समझा जाएगा, ये अलग शरीर कैसे समझे जाते हैं, तो कुछ चर हैं कुछ अचर हैं, ये शरीर है क्षेत्र है, कुछ शरीर क्षेत्र चर हैं कुछ अचर हैं, ये है इसकी विशेषताएं। और इस क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, जीव और परमात्मा, ये सामान्य अर्थ है इन शब्दों का। आप श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यहां कार्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे लिखा है ना। तो शरीर किसका बना हुआ है, लिखा है और किसके अधीन है ये शरीर, कैसे कार्य करता है, कैसे परिवर्तन होता है, इसका कारण क्या है, लक्ष्य क्या है अंतिम जीव का, और जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। ठीक है, आठ है, ठीक है। और फिर अंतिम का प्रभुपाद ने और विस्तार क्या किया है, हमको यह भी जानना चाहिए कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और उन दोनों का प्रभाव क्या है, उनका प्रभाव क्या है और उनका और उनका उनका क्या प्रभाव है और क्या शक्तियां हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं। अब प्रभुपाद जी इतना बता के कहते हैं हमको भगवत गीता को समझना है तो कैसे समझना चाहिए, जैसे भगवान ने वर्णन किया है बहुत स्पष्ट रूप से, परंतु हमको सावधान होना चाहिए कि जीव को और परमात्मा को अलग समझना चाहिए, इसमें गलती नहीं करनी चाहिए। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, ये आपके उसमें क्या काम आएगा, ये एक और उदाहरण देखो क्या लिखा है, सक्षम और अक्षम, अंग्रेजी में पोटेंट और इम्पोर्टेंट, तो दोनों सक्षम और सक्षम इसका अर्थ नहीं है। वो भी ठीक है, पोटेंट एंड इम्पोर्टेंट, समर्थ असमर्थ, अंग्रेजी में इसका बहुत दूसरा पोटेंट इम्पोर्टेंट का अर्थ दूसरा है। पोटेंट का मतलब है वो पुरुष जो बच्चे पैदा कर सकता है, और इम्पोर्टेंट नपुंसक, अर्थ तो ये है वास्तव में। हाँ, क्या बंगाली में क्या लिखा है, बंगाली में बताओ, नहीं बंगाली पुस्तक में क्या लिखा है बताओ, शक्तिमान शक्तिहीन, अगर बंगाली वाला कम से कम थोड़ा सा सही होगा पक्का, क्योंकि वो किसी भक्त के द्वारा ही अनुवादित है, उसमें उसको गुजराती है बंगाली है ये भक्तों ने किए हैं, और हिंदी वाला जो है ये बाहर वाले ने किया है, इसलिए इसमें बहुत गड़बड़। शक्तिमान और शक्तिहीन, ये भी पूर्ण नहीं उतर रहा है, ये प्रभुपाद की अपनी एनालॉजी है, पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट। एक नपुंसक है, इम्पोर्टेंट का सीधा अर्थ है नपुंसक, एक नपुंसक है, और दूसरा उसके विपरीत क्या, हाँ पुंसक और नपुंसक, नहीं भाईसा और मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें कितनी बातों का वर्णन भगवान ने संक्षेप में किया है। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि संक्षेप में आप बता रहे हैं तो विस्तार में किसने बताया है, तो भगवान ये पांचवा श्लोक कह रहे हैं, बोला इसका विस्तार में वर्णन कहाँ मिलेगा, तब कहते हैं ऋषि भिर्बहुदा गीतम छंदो भिर्विवधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर् विनश्चितिः। ऋषि भीर बहुदा गीतम, बहुत से ऋषियों ने इसको गाया है, विस्तार से ऋषियों ने गाया है, और कहाँ गाया है, छंदो भीर विवधि पृथक, और वेदों के अंदर इसका विस्तार से वर्णन किया, ब्रह्मसूत्र पदेश ब्रह्मसूत्र में भी इसका वर्णन है। बोला कैसे है, बोला हेतु मद भी ही, इसका मतलब तर्क वितर्क के साथ विनश्चित ही निर्णय करके बता दिया है। इसके ऊपर निर्णायक ब्रह्म सूत्र आदि में निर्णायक बहुत तर्क वितर्क से स्थापित किया हुआ है। तो इस श्लोक में कौन सा सिद्धांत स्थापित हो रहा है? अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, दोनों का, दोनों की स्थिति क्या है? अर्जुन ने क्या अपना स्थिति, क्या अपने आप को बना रखा है? कृष्ण क्या बन के खड़े हैं? अब भगवद गीता जब बोल रहे हैं, अर्जुन शिष्य है, भगवान गुरु है। तो गुरु ने शिष्य को बताया कि ये मेरा मत है। अब अपने इस बात को प्रमाणित करने के लिए क्या सिद्धांत इस श्लोक में स्थापित हो रहा है? शास्त्र और साधु। तो ये पांचवा श्लोक है, शास्त्र और साधु प्रमाण। भगवान भगवान है, परम परम अधिकारी है, फिर भी स्थान सिद्धांत स्थापित करने के लिए भगवान होते हुए भी साधु और शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। साधु शास्त्र गुरु, ये तीन प्रमाण हैं, वाक्य हैं, जो एक दूसरे का समर्थन। तो ये श्लोक क्या कहता है, पांचवें का सिद्धांत क्या है? तो भगवान ने तो मत दे दिया, वो गुरु की मत, अब उसी का पुष्टि कर रहे हैं साधु से और शास्त्र से। तो अब इसको सुनिए, ऋषि जैसे व्यासदेव बड़ा ऋषि है जिसने यह वेद आदि लिखा है, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य पराशर ने लिखा है विशेष रूप से, और प्रभुपाद ने पराशर के आधार के ऊपर पांच ब्रह्म लिखे हैं। वहां ब्रह्म ही पुच्छम, बहुत इसका तात्पर्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसका तात्पर्य सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको हम ठीक तरह से आज समझेंगे। परंतु चक्रवर्ती पाद कहते हैं वशिष्ठ आदि ऋषियों ने भी योग शास्त्र में इसका वर्णन किया है, वेदों में इसका वर्णन है, ब्रह्म सूत्र में इसका वर्णन है। ब्रह्म सूत्र में जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि सूत्रों के द्वारा इसका वर्णन है। ये किस प्रकार का शब्द है, जो भी वर्णन है शास्त्र में किस प्रकार का है? तब कहते हैं हेतु मद भी, ये सब बहुत बड़े तर्क वितर्क के साथ किया है, और निश्चित है, निश्चय किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी उसमें परिवर्तन हो सकता है, निश्चित किया हुआ है, वेदों के शब्दों में निश्चित करके और बड़े तर्क वितर्क से समझाया गया है। और उसका उदाहरण क्या है, चक्रवर्ती पाद एक श्लोक लिख रहे हैं, वेदांत सूत्र का एक सूत्र लिख रहे हैं, ईक्षतेर ना शब्दम, ब्रह्म को शब्दों से नहीं देखा जा सकता परंतु वेद के वाक्य से समझा जा सकता है। आनंदमयो अभ्यासात, दूसरा वेद सूत्र है, वेदांत वेद का सूत्र है, वेदांत सूत्र दूसरा, ये हमको सबको पता है, कौन सा? आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमय का अर्थ है परम ब्रह्म। और अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ठीक तरह समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है, बड़े सिद्धांत है। प्रभुपाद जी पहले कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो सर्वोपरि प्रमाण और अधिकारी है मत देने के लिए, फिर भी वो साधु का जो पूर्वज आचार्य आदि हुए हैं उनका वर्णन और शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं, लिखा है ना ये लाइन। अब लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण यहां इस 13वें अध्याय के इस विभाग में एक ऐसे बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही क्या है, क्या है, कैसा कैसा विषय है जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं भगवान, जिसके ऊपर बहुत मत है, कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे के विपरीत मत वाला विषय है। और वो विपरीत मत किसके ऊपर सारा, कौन सा विषय है जिसके ऊपर शास्त्रों में विवाद है? क्या विवाद है? कुछ कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है क्या है, और कुछ कहते हैं एक नहीं है। ये इसी के विषय में बात, तो इसका अर्थ है कि अब की क्या जो जो चर्चा चल रही है वो क्या चर्चा चल रही है? मुख्य रूप से चर्चा चल रही है असल में क्षेत्र के जो दो हैं, ये ऐसा विभाग है, ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत बड़ा मतभेद है। हाँ, बहुत बड़ा मतभेद है इसके ऊपर सब दर्शनों का, तो उसका अच्छी तरह से भगवान अब विवेचन करके समझा रहे हैं। पहले भगवान कहते हैं ये अन्य साधु संतों ऋषियों के मत में ऐसे है। अब प्रभुपाद कहते हैं वो कौन से ऋषि हैं जिनका वर्णन किया जा रहा है? बोले एक तो व्यासदेव स्वयं है जो वेदांत सूत्र को लिखने वाला, और दूसरा उनका पिता पराशर, वो भी बड़ा महर्षि है। और फिर क्या लिखा है उसने अपने पुस्तकों में? लिखा है धर्म, उसने धर्म शास्त्र लिखा है। पराशर, एक पराशर स्मृति है, पराशर स्मृति, उसमें लिखा क्या है? अहम त्वम च तथा अन्य। अब ये जो है एक सूत्र पराशर का लिया है प्रभुपाद जी ने, अहम, मैं, त्वम, तुम, च तथा अन्य, और ज्यादा। ऐसा कोई और श्लोक भगवद गीता में पढ़ के आए हैं उसमें ऐसा ही कुछ लिखा है, मैं, आप और दूसरे, ना ना, दो का बारह, दो के बारह में ऐसे भगवान ने कहा मैं, तुम और ये सब अन्य, अन्य सब है ना, ऐसा। ठीक है, अब ये सब दिव्य हैं, भले भौतिक शरीरों में है परंतु दिव्य हैं। अब हम प्रकृति के तीनों गुणों में प्रभाव में आ गए हैं अपने कर्मों के कारण, कभी ऊंच जूनियों में जाते हैं, कभी नीची जूनियों में चले जाते हैं, और ये ऊपर नीचे जाने का कारण हमारा अज्ञान है। और ये अनंत जीव हैं, परंतु परमात्मा एक है, वो अच्युत है, उसके ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो सदा दिव्य स्थिति में रहते हैं। इसी प्रकार जो वास्तविक वेद है उसमें आत्मा और परमात्मा को अलग करके बताया गया है, और विशेष रूप से कठोपनिषद में, और बहुत ऐसे और भी ऋषि हुए हैं उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया है। पराशर उनमें से एक मुख्य है। छंदो भी का अर्थ है वैदिक साहित्य में, ठीक है। तैतृय उपनिषद में एक शब्द जो यजुर्वेद वेद का एक विभाग है, यजुर्वेद के कितने विभाग हैं? मुख्य दो विभाग है, शुक्ल यजुर् और कृष्ण, कृष्ण और शुक्ल यजुर्। वो जो कृष्ण, जो कृष्ण यजुर् है उसका तैतृय उपनिषद, और जो शुक्ल यजुर् है उसके अंतिम 40वें अध्याय का आखिरी जो अध्याय है वो है ईशो उपनिषद। उसमें 40 अध्याय है, उसमें अंतिम अध्याय जो है शुक्ल यजुर्वेद का वो ईशो उपनिषद, और कृष्ण यजुर्वेद में तैतृय उपनिषद है। वेद में चार विभाग होते हैं, हाँ, क्या क्या होता है? एक आरण्य, ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्रह्म नहीं, ब्राह्मण, ब्राह्मण, आरण्य, और एक तो चर्चा कर ही रहे हैं उपनिषद, बाकी एक बच गया संहिता। चारों वेदों में, हर एक वेद में चारों में ये चार विषय होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। संहिता किसको कहते हैं, हमने कभी आपको बताया होगा, वेदों में है मंत्र, और मंत्रों के समूह को कहते हैं सूक्ता। क्या कहते हैं? सूक्ता, जैसे पुरुष सूक्ता, और किचन में उसको बोलते हैं सूक्ता। वही सूक्ता भी शब्द वहीं से आया है, पांच छह सब्जियां सटकटी कर दो तो कुछ मंत्र इकट्ठे करते हैं, वो सूक्त होता है सूक्ता। तो सूक्ता, सूक्ता तो अभी कभी आपको भूलेगा नहीं, सूक्ता मतलब मंत्रों का समूह, और सूक्तों के समूह को संहिता कहते हैं। जहां सूतक कठे सब सूक्ता कठे होना उसको कहते हैं संहिता। और ब्राह्मण जो है उसमें मंत्र होते हैं यज्ञ के, वो मंत्र जो है वो छंद छंद में नहीं होते हैं, वो जैसे किताब पढ़ते हैं ऐसे लिखते हैं उसको, मतलब गीत के रूप में नहीं होते, उसको क्या कहते हैं, पोएट्री में नहीं होते हैं, गद्य, पद्य नहीं, गद्य में होते हैं। और अरण्यक भी ऐसे ही श्लोक है जो पूजा पाठ के हैं, और उपनिषद जो है वो विशेष ज्ञान है जो भगवान के निकट ले जाने वाला है और बंधन से मुक्त करने वाला है, उपनिषद का अर्थ ये। यजुर्वेद का विभाग तैतृय उपनिषद में जीव, हाँ तीनों तीन वर्णन है उसमें, क्या तीन वर्णन है तैतृय उपनिषद में, प्रकृति, पुरुष और भगवान, ठीक है। इसके बाद एक क्षेत्र हो, ये पहले कहेगा ये हो गया। अब तैतृय उपनिषद के 2.5 में क्या लिखा है इसके ऊपर सारा तात्पर्य। अब ब्रह्मा पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम, पुच्छम पूछ कहते हैं, पूछ को, पुच्छम का मतलब पूछ, ब्रह्म में की पूछ जो है, पुछड़ियां जो है उसके ऊपर प्रतिष्ठित है। अब यहां पांच बातें बताई जाएगी, ये पांच असल में क्या है, ये हमारे इस शरीर के कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय को मनोमय भी कहते हैं, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये सब लोग पहले पांच लिख लो। ब्रह्म पुच्छम का अर्थ है अन्नमय कोश, जो अन्न से, यहां लिखा है, जो अन्न से बनता है, जैसे ये शरीर, ये हाड़ मांस मज्जा, ये अन्न से जो बनता है इसको अन्नमय कोश कहते हैं। और प्राणमय है जिसमें हमारे 10 प्राण है, जिसके द्वारा ओज मिलता है, शक्ति मिलती है शरीर को, क्रियाशीलता होती है, ये दूसरा है, क्या है, तीसरे को हमारे पुस्तक में लिखा है ज्ञानमय, और इसी को मनोमय भी कहते हैं, जिसके द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये ज्ञानमय क्या होगा, मनोमय क्या होगा, बुद्धि, बुद्धि मन, जिसके द्वारा मनन हो, सुमरण हो, जानकारी हो, इसका मतलब सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है, हाँ ये ज्ञानमय जो है सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। अब चौथा है इसके बाद विज्ञानमय, ये है आत्मा, और पांचवा है आनंदमय, ये है परमात्मा। तो इसमें जो पहले तीन है, पहले तीन है वो है क्षेत्र, पहले तीन है क्षेत्र, चौथा और पांचवा है दो क्षेत्र के। अब ये पांचों को लिखकर आप ऐसे विभाजन इसका कर लीजिए, हो रहा है ना सब, पांच में से पहले तीन क्या है, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, तीनों है क्षेत्र, क्योंकि स्थूल शरीर, प्राण और सूक्ष्म शरीर का वर्णन। विज्ञानमय है आत्मा और आनंदमय है परमात्मा, ये बात पक्की हो गई। ऐसे अंगूठा कोई दिखा रहा है। हरे कृष्ण। अब ये आपने सब लिखा हुआ पढ़ लिया, ये सब पुस्तक में ऐसे लिखा है, समझ गए, हाँ सब लिखा है, लेकिन इसको तात्पर्य में सब है, परंतु इसको मैंने साफ करके बिल्कुल सिंपल करके दे दिया। पांच लिख के तीन के सामने लिख दो क्षेत्र, दो के सामने क्षेत्र गे, एक आत्मा एक परमात्मा। तो अब क्या बताया गया, अब बताया गया हमको कि ये शरीर किसका बना हुआ है। प्राणमय लिखा प्रभुपाद ने, फिर ब्रह्म रियलाइजेशन किसकाल, विज्ञानमय, इसका मतलब आत्म साक्षात्कार करना, और फिर आनंदमय, ये है परमात्मा। ये ब्रह्मपुच्छम की परिभाषा है। और इसके बाद लिखा है तीन जो है शरीर है, और दो में मुख्य रूप से विज्ञान आनंदमय जो है वो मुख्य क्षेत्रज्ञ है, सर्व क्षेत्रज्ञ है, और जो विज्ञानमय है वो व्यक्तिगत क्षेत्रज्ञ है। आनंदमय अभ्यासात यहां आता है शब्द। अब एक लाइन लिखी है प्रभुपाद ने, भोग करने के लिए अपने आनंद का अभ्यास करने के लिए, आनंदमय अभ्यासात की परिभाषा है, आनंदमय अभ्यासात, ये उस आनंदमय अभ्यास करने के लिए अपने आप को विज्ञानमय प्राणमय ज्ञानमय और आनंदमय में भगवान प्रकट करते हैं, ठीक है, विस्तृत करते हैं। अच्छा, जीव की सिद्धि कैसे, जीव सिद्धि को कैसे प्राप्त करेगा, क्या लिखा है, जीव सिद्धि को कब प्राप्त करेगा, जब वो अपनी सारी क्रियाएं आनंदमय में मोड़ देगा, आनंदमय की ओर मोड़ देगा तो सिद्धि को प्राप्त करेगा। अब दोबारा देखो इसके नीचे वही लिखा हुआ है, अब इसके नीचे लिखा है ये है वास्तविक, वास्तविक क्या है, पूर्ण वो तो हो गया, अब क्या लिखा है, ये है वास्तविक चित्र, वास्तविक ज्ञान, द रियल पिक्चर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दिस इज द रियल पिक्चर, ये है वास्तविक दर्शन, ये है वास्तविक दर्शन होना चाहिए यहां, ये है वास्तविक दर्शन। क्या है वास्तविक दर्शन, के भगवान क्षेत्र का परम ज्ञाता है, जीव आधीन ज्ञाता है, और प्रकृति क्षेत्र है, प्रकृति क्षेत्र को देती है, इसको वास्तविक, हमने क्या बोला था पहले शब्द, दर्शन है, ये पिक्चर का मतलब ऐसे दर्शन है, और इस सत्य को वेदांत सूत्र में ढूंढना चाहिए। और उस वेदांत सूत्र में इसको क्या लिखा है, वेदांत सूत्र में इस सारे विषय को कार्य कारण के आधार के ऊपर तर्क के साथ समझाया गया है। अब तीन वेदांत सूत्र के प्रभुपाद ने यहां सूत्र दिए हैं, 232, 238, 340। इसमें पहला है क्षेत्र के लिए, दूसरा है जीवात्मा के लिए, तीसरा है परमात्मा के लिए। पहले में लिखा है न व्याद अश्रुतेह, न व्याद अश्रुतेह, इसका अर्थ है प्रभुपाद ने, इसका अर्थ है क्षेत्र, क्रिया क्षेत्र, न आत्मा श्रुते है, न आत्मा श्रुते है, इसका अर्थ है पहला क्षेत्रज्ञ जीव, और तीसरा है परात तु तत् श्रुत, उससे भी ऊपर, ये है तीसरा, दूसरा क्षेत्रज्ञ भगवान। तो ये तीन वेदांत के सूत्र प्रभुपाद ने यहां दिए हैं, एक क्षेत्र के लिए, एक जीव क्षेत्रज्ञ के लिए, और एक परमात्मा क्षेत्रज्ञ के लिए। अब हम 6 और 7 श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। इन श्लोकों में जो ये चादृक च या विकारी च जो चौथे श्लोक में कहा गया था ना, उसका विस्तार मिलेगा। और जहां आएगा बताएंगे, वहां आप लिख के पक्का करके उसके साथ मिला लेना। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिराव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगत संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकाराम उदाहृतम। तो पहले लिखा है महाभूतानि, सबको मालूम है महाभूत किसको कहते हैं? पंच महाभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ठीक है। अहंकारो, अहंकार जिनसे ये 5 भूत उत्पन्न होते हैं, ये चक्रवर्ती पाद ने पूरी सृष्टि का वर्णन बताया ऐसे। बुद्धि अव्यक्त, अव्यक्त क्या है आपके विचार में? अव्यक्त का मतलब प्रधान, अव्यक्त प्रधान, जहां से ये सब उत्पन्न होते हैं। असल में महत्त्व बुद्धि है, महत्त्व पहले महत्त्व फिर प्रधान, इसका अर्थ है 5 भूत अहंकार महत्त्व और प्रधान। इंद्रियाणि दशैकम च, 10 इंद्रियां, कोई बताएगा 5 कर्म इंद्रियां कौन सी है, 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? आंख नाक कान जीवा त्वचा, ये हो गई 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां हाथ पांव जीभा और गुदा और मलमूत्र त्यागने के जो, ठीक है। तो इसमें से कौन इंद्रियां जो दोनों है? दोनों है, जीवा है, ज्ञान भी है कर्म भी है। कर्म में क्या करती है? कर्म में बोलता है, कर्म में बोलता है और ज्ञान में चखता है। रस जो है वो जीवा लेती है, वो है ज्ञान इंद्री, जो बोलती है वो है पंच। दशाएकम, एकम आ गया, दशाई के साथ एकम आ गया, एक क्या है? मन। च पंच, पंच इंद्रिय प्राण, पंच इंद्रिय गोचर है, एक शब्द है, ये 5 तन्मात्राएं। इंद्रिय गोचर का मतलब जैसे गाय चरने जाती है, जहां इंद्रिय चरने जाए, गाय गाय को भी इंद्रिय कहते हैं ना, गो कहते हैं ना, गाय भी गो और इंद्रिय भी गो। और जहां चरने जाए, गाय घास चरने जाती है और इंद्रियां रूप रस गंध आदि में जाती है। तो ये है 5 विषय, ये किछ, ये सब हो जाएंगे 24, गिन लो। हाँ? ये 24 है, ये है प्रकृति और इसी का क्या बना हुआ है शरीर, ठीक है। ये क्षेत्र किसका बना हुआ है जो हमारा प्रश्न था उसका उत्तर है। 4 में देखो, ये चार, ये क्षेत्रमिति चादृक, चादृक जो है उसका ये उत्तर है। अपे इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये 4 हैं उसके गुण, ये शरीर के गुण है। इसमें इच्छा उत्पन्न होती है, द्वेष होता है, सुख होता है, दुख होता है। और संघातस का अर्थ क्या है? शरीर, हाँ, सबको मिला, ये सब जहां 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 ये सब जहां ये सब हैं कहां, मतलब शरीर में है। और फिर लिखा है चेतना, ये चेतना आत्मा के स्तर वाली नहीं है, ये है मन के स्तर वाली चेतना, क्योंकि ये असल में क्षेत्र के अंतर्गत आती है, आत्मा के अंतर्गत नहीं। चेतना और धृति का अर्थ क्या है? धृति, विवेक, विवेक जिसको कहते हैं, जो जो असल में बुद्धि का काम है, मन का काम है, असल में ये मन और बुद्धि के काम। और फिर है विकार, उस शरीर में जो छह विकार आते हैं जन्म लेने के से लेकर मरने तक, छह विकार, वो विकार की बात है। तो इतना इसमें तीन का उत्तर है इसमें अभी तक, ठीक है। चक्रवर्ती पाद देखते हैं, इस श्लोक में जो क्षेत्र का स्वरूप है उसका वर्णन है। तीन का स्वरूप जानना है ना हमको, पूर्ण ज्ञान किसको माना जाता है जो तीन का स्वरूप माने, किसका तीन का स्वरूप माने, प्रकृति का, जीव का और पुरुष का। तो यहां प्रकृति का स्वरूप जो है, क्षेत्र का स्वरूप है उसका वर्णन। महाभूतानि सब मानते हैं, ज्ञान गए क्या है पांचवा। अहंकार कहते हैं झूठे अहंकार को जो महाभूतों का कारण है। सृष्टि जब होती है ना, महाभूतों से पहले सूक्ष्म आते हैं फिर स्थूल आते हैं, तो अहंकार पहले आता है उससे महाभूत बनते हैं। और फिर लिखा है बुद्धि, उसका मतलब है महत्तत्व। बुद्धि का अर्थ क्या है इस श्लोक में, महत्तत्व। और वो अहंकार का कारण है, अहंकार महत्तत्व से उत्पन्न होता है। अव्यक्त कहते हैं प्रकृति को, जहां से महत्तत्व उत्पन्न होता है, जो प्रधान है जहां से महत्तत्व, प्रकृति जो, उसको अव्यक्त कहते हैं। और इंद्रियां हमको मालूम है, एक मन है ये भी हो गया, पांच इंद्रियों के विषय ये हो गया, ये 24 तत्वों का शरीर बना हुआ। ये किसका उत्तर है तीसरे श्लोक में, हाँ तीसरा श्लोक है क्या, ये चौथा होना चाहिए, यहां तीसरा क्यों लिखा है, ये चार वर्ष नंबर चार में, ये चार का उत्तर है, इसने गलत लिखा है, चार होना चाहिए, तीन क्यों लिखा है, ठीक है। ये किसका उत्तर है, यहां तक इसको नाम लिखें, यच्च यच्च, ये जो यच्च शब्द है कि ये शरीर किसका बना हुआ है उसका उत्तर है। यादृक आगे आएगा। अब है संघातस, संघाता का अर्थ क्या है, ये शरीर जिसमें 24 तत्वों का समूह है, 24 तत्वों के समूह को संघात कहते हैं, जो है शरीर या ये प्रकृति पूरी ब्रह्मांड। चेतना मानसिक, ये मानसिक वृत्ति है और धृति है सहनशीलता, सहनशीलता। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं इच्छा, ये मन के सारे, ये मन के भी इच्छा है, द्वेष है, ये सब मन का, मन की क्रियाएं हैं। और ये मन की क्रियाएं हैं इसलिए ये सब क्षेत्र में आनी चाहिए, क्योंकि मन सूक्ष्म शरीर है वो क्षेत्र है। आत्मा की भी इच्छाएं होती हैं परंतु वो इनसे विभिन्न होती है। तो मन क्या काम है, ये कहां से उत्पन्न होती है, संकल्प विकल्प आदि जो मन के काम है, जिसको श्रुति में लिखा है। अब ये जो मन के कार्य लिखे हैं विस्तार से, इस श्लोक में नहीं है, इस श्लोक में इतना ही लिखा है मन के कार्य, परंतु मन के कार्य ये बृहदारण्यक के उपनिषद में लिखे हैं, काम संकल्पो विचिक्तसा श्रद्धा धृति ह्री धी भी इति एतत् सर्वं मन एव। तो मन के ये सारे कार्य हैं क्या, काम संकल्पो, इच्छाएं करना, इच्छा और विवेक, संकल्प, संकल्प करना ये ठीक है ये ठीक नहीं है दो, और श्रद्धा और विचिकित्सा, विचिकित्सा का क्या अर्थ होगा, विचिकित्सा का क्या अर्थ होगा, जिसका जिसके लिए कोई निर्णय नहीं हो, ऐसे बीच में पड़ा हो, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब असमंजस में पड़ा रहना, न इधर का न उधर का, मन ऐसी स्थिति में मन की होती है। और फिर है धृति, मतलब सहनशीलता और ना सहनशीलता नहीं, दोनों दोनों पक्ष है, हाँ और ना दोनों, और है ह्री ध्री एंड भी, ह्री ही धी ही भी, और एक का अर्थ है निम्रता, एक का अर्थ है बुद्धि, एक का अर्थ है भय, भी का मतलब भय हो गया और धी का मतलब बुद्धि हो गया, तो बाकी बच गया ह्री, उसका अर्थ है निम्रता। ये सब मन से उत्पन्न होती है, ये मन के कार्य हैं, मन शरीर के सूक्ष्म शरीर है, इसलिए सब क्षेत्र में आ गया। तो अभी तक भगवान ने केवल क्षेत्र किसका बना हुआ है और उसके गुण क्या है, ये गुणों का वर्णन हो गया ना, अभी जो वर्णन किया है ये क्या किया, उसके गुण क्या है उसका वर्णन हो गया, और फिर विकारों का वर्णन हो रहा है। विकारश्च, छह विकार होते हैं, जन्म लेता है, बड़ा होता है, कुछ समय रहता है, पक परिपक्व होता है, फिर टूटने फूटने लगता है और मरता है। तो ये हो गया हमारा, अब आगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखें। श्री प्रभुपाद जी यहां पूरे जगत की वर्णन कर रहे हैं, शरीर का वर्णन नहीं कर रहे हैं। देखो पहली लाइन में क्या लिखा है कि प्रमाणिक शास्त्रों से और ऋषियों से, वेदों के मंत्रों के द्वारा, वेदांत सूत्र के द्वारा, ये शरीर किस चीज का बना हुआ है उसका वर्णन किया जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड का, प्रकृति का, इसका अर्थ है प्रकृति का अथवा जगत का, और शरीर भी उसी का बना हुआ है जिसका जगत बना हुआ है। एक कहावत है खंडे सो ब्रह्मांडे ना, पिंडे सो ब्रह्मांडे, पिंड का मतलब शरीर, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। हाँ ये छोटा सा ब्रह्मांड है, क्या बोला क्या बोला,
सिंपल सिंपल
सैंपल, ब्रह्मांड का सैंपल है। और प्रभुपाद जी पहले ये 24 गुणवाते हम गिन के आ गए इन सब का, प्रभुपाद जी और बुद्धि कहते हैं, बुद्धि बुद्धि कहते हैं, और अहंकार झूठा कहते हैं, और फिर अव्यक्त की बात करते हैं, ये सब तो हम पढ़ के आए हैं, और पांच इंद्रियों के विषय भी हो गए, और ये 10 इंद्रियां और 11वां मन भी हो गया। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं मन को भी इसमें गिन गया, ये 11 हो गए, और 5 फिर इंद्रियों के विषय हो गए, इन सब के मिश्रण 24 का मिश्रण हो गया, ये हो गया क्षेत्र, इसको कार्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये 24 तत्वों का विश्लेषण किया गया है, इसी को कार्य क्षेत्र कहना चाहिए। ठीक है, ये क्षेत्र का वर्णन हो गया। अब इसमें इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, और ये कहां से आते हैं, ये शरीर से उत्पन्न होते हैं, इसके मतलब ये है इस शरीर के गुण। तो ये है दो जो गुण, जो दूसरा है यच्चाद्रिक, ये चाद्रिक की परिभाषा है ना। अब प्रभुपाद जी इस चेतना को लिखते हैं कि जो जीवन का क्या लिखा है, जीवन का लक्षण, लक्षण जो जीवन का लक्षण है जिसको चेतना कहते हैं, ये सूक्ष्म शरीर में है जो 3 चीजों का बना हुआ है। अब आप लोग जानते हैं सूक्ष्म शरीर सामान्य हम रूप से कहते हैं 3 चीजों का, भागवत में सूक्ष्म शरीर को 4 का बोला हुआ है, और चित्त, मन बुद्धि अहंकार और चित्त को लिखा है दूषित चेतना, और इन चारों के अधिपति देव है, वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इसमें से बुद्धि का है वासुदेव, अहंकार का है संकृष्ण, और प्रद्युम्न और अनिरुद्धा है मन का और प्रद्युम्न मन का, उसके बाद क्या बच गया? चित्त का, चित्त का वासुदेव है, चित्त का वासुदेव, बुद्धि का अनिरुद्ध और मन का प्रद्युम्न। लिखो ये चौथे स्कंद भागवत में आता है, इसको लिख के याद रखो। चार अंतःकरण हमारा चार है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। मन बुद्धि अहंकार और झूठा अहंकार और चित्त, इन चारों के अधिपति हैं। चित्त का वासुदेव है, अहंकार का संकर्षण है, बाकी बच गए दो। और जैसे आते हैं अनिरुद्ध बुद्धि का है और मन का प्रद्युम्न, ऐसे होना चाहिए। और यहां प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। क्या चीजें? दो चीजें, चित्त और धृति, दोनों सूक्ष्म शरीर में आती हैं। इस श्लोक में जो चित्त और धृति है ये किसमें आते हैं? सूक्ष्म शरीर में, ठीक है। इसलिए ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है, ध्यान देखिए। ये असल में सृष्टि कैसे होती है उसका वर्णन किया है, ये भागवत में सृष्टि का वर्णन किया है। देखो, पांच भूत जो है ये झूठे अहंकार से उत्पन्न होते हैं, उससे प्रकट होते हैं ऐसे, और वो फिर महतत्व से आता है, और महतत्व प्रकृति से आता है, फिर इसको तामस बुद्धि कहते हैं, और तामस बुद्धि अज्ञान में क्या बुद्धि कहते हैं, अहंकार तमोगुण में, अहंकार सतोगुण में, अहंकार रजोगुण में। तो इनसे इंद्रियां होती हैं, मन होता है, ये सब अलग अलग होता है। ये पूरा सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि चक्र ही भागवत में पढ़ना है आपको, यहां नहीं पढ़ना है। और प्रधान को देखो, यहां लिखा है अव्यक्त प्रधान को कहते हैं, प्रभुपाद जी ने लिख दिया अव्यक्त है प्रधान। अन्य शास्त्रों में इसका विस्तार है, परंतु भागवत भगवत गीता में इसका संक्षेप है। अब एक बात लिखिए, क्षेत्र जो है वो अस्थाई है और भौतिक है, परंतु क्षेत्रज्ञ जो है वो उसका स्वामी है और उससे भिन्न है। यहां हमारा पहला विभाग, दूसरा विभाग पूरा हुआ। अब ये चाद्रिक यतस्य या विकारी यत समासेन में श्रणो, अभी तीन का ही वर्णन विशेष रूप से हुआ है। अब तीसरे विभाग का है 8 से 12, तीसरा विभाग है 8 से 12। भगवान श्री कृष्ण अधिक ज्ञान का, जो ज्ञान का प्रोसेस है, ज्ञान का प्रोसेस है का मतलब ज्ञान का, ज्ञान की विधि, ज्ञान की विधि और मुक्ति का साधन बताते हैं। ये तो एक ही, ये सब श्लोक एक ही लाइन में है, सब कठे श्लोक हैं, और इसमें कुछ 20 विषय हैं। इसको कहते हैं ये ज्ञान के, ये ज्ञान है, इसके विपरीत सब अज्ञान है। तो आइए श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, अभी टाइम हो गया श्लोकों का पाठ करके, फिर शुक्रवार को इस विभाग को पूरा करेंगे। अमानी त्वमदम्भी त्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् अशौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार ग्रहादिशो नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानुष्टपपतिशो मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरभिविचारिणी विवेक्तदेशसेवितं आरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततो अतो अन्यथा। इसमें आप एक आठ को छोड़ो, नौ को छोड़ो, दस को छोड़ो, ग्यारहवां जो श्लोक है उसकी पहली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञान के साधन के लिए सबसे मुख्य है नंबर वन क्या है, अनन्य योगेन भक्तिर अभिविचारणी। दूसरे नंबर में है आचार्य उपासनम। देखो पहले श्लोक का आठवें श्लोक का दूसरा लाइन आचार्य उपासनम, और हमारे अपने दृष्टि से पहला जो शब्द है वो चेतना महाप्रभु के भक्ति से बहुत ही निकट, अमानित्व। ज्ञान का पहला लक्षण है अमानित्व। अब ये क्या है कि आपको कल का दिन छुट्टी है, आप इस शब्दों का डेफिनेशन सबका देख लीजिए। प्रभुपाद ने सब शब्दों का डेफिनेशन दिया है, कुछ जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और ये लंबा चौड़ा इसका तात्पर्य कोई मेरे ख्याल चार पांच पेज का है, चार पांच पेज है पक्का, पांच छह पेज है। अब और फिर चौथा विभाग हमारा है 13 से 19, 13 से 19 गेय का वर्णन है, कृष्ण गेय के विषय में वर्णन कर रहा है, तब हमारे चार विषय पूरा हो जाएंगे, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञ, बाकी बच गया पुरुष और प्रकृति, वो आएगा आगे। वो है ना ऋषि भीर बहुधा गीता फिर छंदो देख प्रत्यक्ष चाहे, ये श्लोक जो है ना तो अन्य ऋषि पराशर ने जैसे लिखा है और फिर वेदांत सूत्र जो व्यास ने लिखा है वहां पाया जाता है।